नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों का असर दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश पर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि आर्थिक संबंध व्यावसायिक विचारों से प्रेरित होते हैं। विशेषज्ञों ने ये बात कही। भारत और कनाडा दोनों अलग अलग उत्पादों का व्यापार करते हैं, दोनों की समान उत्पादों पर प्रतिस्पर्धा नहीं है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, इसीलिए व्यापार संबंध बढ़ते रहेंगे और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता रुक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर को कनाडा के अपने समकक्ष जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में चरमपंथी तत्वों की निरंतर भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था, जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश के राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं और वहां भारतीय समुदाय को धमकियां दे रहे हैं। आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10B/10BB में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को भी 1 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। विभाग ने कहा, आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म ITR-7 में आय का रिटर्न दायर करने की नियत तारीख जो 31 अक्टूबर 2023 थी, उसे 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ITR-7 राजनीतिक दलों तथा चुनावी ट्रस्ट के अलावा धर्मार्थ व धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवर निकाय द्वारा दाखिल किया जाता है। CBI ने मुंबई की कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ के साथ 975.08 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। बैंक की शिकायत पर CBI ने ये कार्रवाई की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगन लाल मंधाना, पूर्व कार्यकारी निदेशक मनीष बिहारी लाल मंधाना और कुछ अन्य लोगों ने धन जुटाने को लेकर आपराधिक साजिश के जरिए बैंकों के समूह को धोखा दिया। मंधाना परिवार के नियंत्रण वाली 29 साल पुरानी कंपनी ने 2008 में बैंक ऑफ बड़ौदा से कर सुविधाओं का लाभ उठाना शुरू किया। बैंक ने उनके कर्ज खाते को 31 दिसंबर 2016 को गैर निष्पादित संपत्ति कर दिया। महाराष्ट्र में नेरल माथेरान और गुजरात में सानंद नल सरोवर भूमि भूखंड निवेश में शीर्ष 5 उभरते गलियारों में से है, क्योंकि इनके जरिए निवेशक अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया के भारत में शीर्ष निवेश गलियारे रिपोर्ट के अनुसार, भूमि भूखंडों को खरीदने के बाद निवेशकों को स्थिर किराए की आय उत्पन्न करने के लिए सप्ताहांत आवास, अवकाश गृह आदि विभिन्न तरह के आवास का निर्माण करने होंगे, जिससे अच्छा मुनाफा हो सकता है। रियल एस्टेट कंपनी डायनेमिक्स समूह की बिक्री बुकिंग पिछले वित्त वर्ष में 38% बढ़कर 1019 करोड़ रुपए हो गई थी और मजबूत आवास मांग के चलते उसने 2023-24 में 40% से अधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है। मुंबई स्थित डायनेमिक्स समूह 5 दशक से अधिक पुरानी कंपनी है। इसने अब तक 3 करोड़ वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र पर आवास बनाए व बेचे हैं। डायनेमिक्स समूह के निदेशक जय गोयंका ने PTI भाषा से कहा, हमने पिछले वित्त वर्ष में 1019 करोड़ रुपए की मजबूत बिक्री बुकिंग हासिल की, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये 740 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि मजबूत आवास मांग बनी हुई है। गोयंका ने कहा, हम इस वित्तीय वर्ष में 1400-1500 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग जल्द ही राज्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए गैर परिवहन दोपहिया वाहनों के बेहतर विनियमन तथा सुरक्षित संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश लाएगा। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के परिवहन सचिव सौमित्र मोहन की अध्यक्षता में ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव जैसी विभिन्न कैब सेवाओं और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जोमैटो तथा स्विगी जैसी ऑनलाइन डिलीवरी एजेंसियों के साथ एक बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में फैसला किया गया कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अनाधिकृत रूप से गैर परिवहन दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करने वाले सभी व्यवसायों को प्रासंगिक मोटर वाहन अधिनियमों तथा नियमों के अनुरूप एक निरीक्षण तंत्र के तहत लाया जाना चाहिए। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इन वाहनों को परिवहन श्रेणी में लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई दोपहिया वाहनों को वित्त पोषित करने वाली वित्तीय संस्थानों से NOC प्राप्त करने में परिवहन विभाग के हस्तक्षेप का अनुरोध किया। CDIL सेमीकंडक्टर्स ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की SPECS योजना के जरिए इन नई सेमीकंडक्टर पैकेजिंग लाइनें जोड़ेगी। सेमीकंडक्टर चिप्स तथा घटक निर्माता नई लाइनों के जरिए वार्षिक क्षमता को 10 करोड़ यूनिट तक बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उसने 5 करोड़ उपकरणों की सरफेस माउंट पैकेजिंग लाइन के साथ इस उत्पादन के पहले चरण की शुरुआत। इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर 28 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार CDIL सेमीकंडक्टर भारत सरकार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक घटकों तथा अर्ध चालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के जरिए नई सेमीकंडक्टर पैकेजिंग लाइनें जोड़ेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।